इशिका राधिका के साथ केशव के घर से वापस लौट आई थी। वो अभिमन्यु को वहां हो रही बातचीत के बारे में बता रही थी। इशिका यही चाहती थी कि केशव और राधिका फिर से एक साथ आ जाए और राधिका को अपनी खुशियां मिले। अभिमन्यु उसका साथ देने के लिए हमेशा की तरह तैयार था, लेकिन पहले उसने इशिका की कंपनी को पब्लिक करने पर ज्यादा ध्यान दिया। बातों ही बातों में अभिमन्यु ने इशिका से पूछा कि क्या वो पार्थ की एडवाइस मानते हुए डॉक्टर अनामिका की आइडेंटिटी भी सबके सामने रिवील करना चाहती है। अभिमन्यु ने सारा फैसला इशिका के ऊपर छोड़ दिया था। इशिका इस बारे में सोच रही थी, तभी अंजलि वहां पर पहुंची। उसने अभिमन्यु और इशिका की बातें सुन ली थी। अंजलि ने उनके बातचीत के बीच में दखल दिया, जो कि अभिमन्यु को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अंजलि ने उनके पास आते हुए तेज और सख्त आवाज में कहा, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग अपने फैसले के बीच किसी तीसरे इंसान की सुन भी कैसे सकते हो? किसे पता है कि उसकी इंटेंशन क्या है, वो तुम दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रहा हो? फिलहाल तो आप हमारे बीच में आ रही है मिस चौहान। सही कहा आपने कि हम दोनों के फैसले के बीच किसी तीसरे इंसान का आना सही नहीं है। तो आप कौन हैं? आप भी थर्ड व्हील बनने की कोशिश कर रही हैं। किसी तरह की उम्मीद मत रखिएगा कि यहाँ जबरदस्ती रुक जाने पर आपके बारे में मेरे ख्याल बदल जाएंगे, अभिमन्यु ने तीखे लहजे में जवाब दिया। मैं तुम्हें ओपिनियन बदलने को कह भी नहीं रही हूँ। जो सोचना है सोचो, बस ये बोल रही हूँ कि पार्थ से दूर रहो। वो सुनैना और प्रशांत का बेटा है, देखना जरूर एक दिन धोखा देगा और तुम्हें बर्बाद करने के लिए ही आया है। अंजलि ने एक बार फिर वही बातें दोहराना शुरू कर दी थीं। उसे उम्मीद थी आज नहीं तो कल अभिमन्यु उसकी बात पर यकीन करेगा ही। इससे पहले कि उन दोनों के बीच में कोई बहस शुरू होती, इशिका ने अभिमन्यु का हाथ पकड़ा और थके हुए स्वर में कहा, मुझे आराम करना है। हाँ बिल्कुल, चलते हैं, अभिमन्यु ने जवाब दिया और इशिका का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगा। उसने अंजलि की बात का जवाब तक देना जरूरी नहीं समझा। अभिमन्यु जिस तरह अंजलि को इग्नोर कर रहा था, ये देखकर अंजलि ने अपना सिर पकड़ लिया था। वो पिछले दो दिनों से उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, पर अभिमन्यु उसकी सुनने तक को तैयार नहीं था। लगता है अब उनसे ही बात करनी होगी, अंजलि ने गहरी सांस ली और बिना सोचे समझे अपने कदम वसुधा के कमरे की तरफ बढ़ाने लगी। मेन विला में जाकर अंजलि ने वसुधा के कमरे का रास्ता पूछा और बिना सोचे समझे वसुधा के कमरे में पहुंच गई थी। वसुधा इस वक्त एक ऑनलाइन साइट पर बच्चों के नाम देख रही थी। अंजलि बिना दरवाज़ा खटखटाई सीधे कमरे के अंदर गई और गुस्से में बोली, आप यहाँ आराम से बैठकर सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही हैं और वहाँ मेरे बेटे की जिंदगी दांव पर लगी है? अंजलि की आवाज़ सुनकर वसुधा ने अपना चश्मा हटाया और उसे खूरते हुए कहा, मिस चौहान, आप किसकी बात कर रही हैं? मुझे समझ नहीं आया, क्या आपका कोई बेटा है भी? ताने मत दीजिए मिसेज राजवंश, आप अच्छे से जानते हैं मैं अभिमन्यु की बात कर रही हूँ, उसके अलावा मेरा और कोई बेटा नहीं है, अंजलि उनके पास आते हुए चिढ़ते हुए बोली। अच्छा, तो तुम अभिमन्यु की बात कर रही हो, तुम्हें याद आ गया कि वो तुम्हारा बेटा है? मैं कह रही हूँ अंजलि, जिन इरादों से तुम यहाँ आई हो उन्हें अपने मन में लेकर निकल जाओ। अगर उसके बचपन में तुम उसके पास आती तो फिर भी मैं उसे कुछ ना कुछ कहकर बहला देती ताकि वो तुम्हें एक्सेप्ट कर सके, पर अब वो बच्चा नहीं रहा है, वसुधा ने जवाब दिया। उन्हें यही लगा कि अंजलि अभिमन्यु पर अपना हक जताने के लिए वहां पर आई है। अंजलि ने अपने गुस्से को शांत करने के लिए दो से तीन बार गहरी सांस ली और फिर कहा, देखिए मिसेज राजवंश, मुझे अभिमन्यु पर हक नहीं चाहिए, बेशक आप उसे अपना बेटा बनाकर रखिए, लेकिन पार्थ को किस हक से अपने यहाँ रख रखा है? वो लड़का मुझे धमकी दे रहा है कि वो अभिमन्यु को बर्बाद कर देगा। आप लोगों में से कोई मेरी सुनने को तैयार नहीं है। आप तो सुनैना रायचंद को अच्छे से जानती हो ना, वो कैसी औरत है? उन्होंने आप पर भी झूठे इल्जाम लगाए थे कि आप उन्हें टॉर्चर करती थी। अपने बच्चों को वो यहाँ अभिमन्यु को तकलीफ देने के लिए भेजती है। मेरी बात का ना सही, लेकिन सुनैना के बर्ताव को याद कीजिए। वसुधा को यकीन दिलाने के लिए अंजलि लगातार कुछ ना कुछ बोले जा रही थी। बस बहुत हो गया, वसुधा ने उसे हाथ दिखाकर चुप करते हुए कहा। फिर वो सख्त आवाज में बोली, मैं तुम्हें और सुनैना दोनों को ही अच्छे से जानती हूँ। जरूरी नहीं है कि एक माँ के दिए संस्कार बच्चों के अंदर आ जाए। प्रशांत कभी मुझसे कुछ नहीं सीख पाया, अभिमन्यु तुम्हारा बेटा होकर भी तुमसे लाख गुना अच्छा है। वैसे ही सुनैना का बेटा पार्थ भी एक अच्छा लड़का है। पहले मैंने उसे गलत समझा था, पर वो वैसा नहीं है। अब तुम्हारी दलीलें हो गई हैं तो यहाँ से चली जाओ, कर्फ्यू हट गया है। मैं कहीं नहीं जाऊँगी, अंजलि ने अपने हाथ बांधते हुए सख्त आवाज में कहा। फिर ऐसे हालात में मुझे सिक्योरिटी गार्ड का सहारा लेना होगा, वसुधा ने भी तीखे लहजे में कहा। वो भी किसी मामले में अंजलि से कम नहीं थी। जिसको बुलाना है बुला लीजिए, बुलाना नहीं जाऊंगी। पहले पार्थ को यहाँ से निकालिए फिर चली जाऊंगी, अंजलि ने भी जिद पर अड़ते हुए कहा। अभिमन्यु को ये जिद और गुस्सा जैसे अंजलि से जीन्स में मिला था। वसुधा ने अंजलि की आंखों की तरफ देखा, जो किसी भी तरह से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वसुधा भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उन्होंने तुरंत सीधे पृथ्वी को कॉल किया और बोली, कुछ फीमेल गार्ड्स को लेकर अंदर आओ, हो सके तो पुलिस भी बुला लो। डॉक्टर अंजलि चौहान पागल हो गई है और राजवंश विला एक पागलखाना नहीं है जो हर किसी को यहाँ रहने की इजाजत दे। वसुधा ने कॉल पर जो भी कहा था उसे सुनकर अंजलि हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। पृथ्वी के पास कॉल जाते ही उसने तुरंत अभिमन्यु को सारी बात के बारे में बताया। लगता है मिस चौहान अब मेरे तरीके से ही यहाँ से बाहर निकलेगी, अभिमन्यु ने सर्द आवाज में कहा और फिर कॉल कट कर दिया था। जाने से पहले अभिमन्यु ने एक नज़र इशिका की तरफ देखा जो अभी अभी सोई थी। अभिमन्यु ने उसके फोरहेड पर किस किया और फिर लाइट्स ऑफ करके नीचे जाने लगा। इस वक्त उसके चेहरे पर गुस्से के गहरे भाव थे। वसुधा के कमरे में अंजलि अपनी जिद पर अड़ी हाथ बांधकर खड़ी हुई थी। पृथ्वी कुछ फीमेल गार्ड्स के साथ कमरे के अंदर पहुंच गया था। अभिमन्यु भी वहां पर आ गया। अभिमन्यु अंजलि के सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया था। उसने अंजलि की आंखों में देखते हुए इंटेंस वॉइस में कहा, आखिर आप चाहते क्या हैं? बस इतना ही कि पार्थ रायचंद को इस घर से निकाल दो और तुम लोग उससे दूर रहो। अंजलि ने सीधे सीधे जवाब दिया, मैं उसे बाहर नहीं निकाल सकता, इस घर पर उसका भी हक है और वो परमानेंटली यहाँ नहीं रहता है, अभिमन्यु जवाब में बोला। इशिका पार्थ का प्रोजेक्ट क्यों कर रही है, उसे बोलो कि अपने कदम पीछे ले ले, अंजलि ने भौहें चढ़ाकर आगे कहा। अंजलि और अभिमन्यु एक दूसरे से शांति से बातें कर रहे हों पर आंखों ही आंखों में उनके बीच एक जंग सी छिड़ी हुई थी। हालांकि अभिमन्यु अपनी तरफ से पूरे पेशेंसली जवाब दे रहा था। उसने आगे कहा, इशिका एक इंडिपेंडेंट वुमन है, अपने प्रोजेक्ट, अपने काम और बाकी फैसले खुद से करती है, मुझे बीच में बोलने का हक नहीं है। पर तुम उसे सही गलत तो समझा सकते हो ना, एक हस्बैंड को पूरा हक होता है अपनी वाइफ से वो कुछ भी गलत करने से रोकने का, अपने लिए ना सही अपने बच्चों के लिए उसे रोक लो, एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, अंजलि उसे समझाते हुए बोली। उसकी बात सुनकर अचानक अभिमन्यु हंसने लगा था। अंजलि को अपने शब्दों का एहसास हुआ तो उसकी नजरें झुक गई थी। अभिमन्यु की हंसी उसका मजाक उड़ा रही थी।
आपको फिलोसोफर होना चाहिए मिस चौहान, एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, हस्बैंड को वाइफ को रोकने का हक है, ब्ला ब्ला, ये सब बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती हैं। सबसे पहले तो आप वो माँ नहीं हैं जो अपने बच्चों के लिए कुछ कर गई थी। दूसरा, आपके पति ने भी आपको डॉक्टर बनने से रोकने की कोशिश की थी, क्या आप रुकी थी जो वो रुके थी? अभिमन्यु ने कड़वाहट से जवाब दिया। वो खुद के इमोशंस को कंट्रोल करने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन बार बार उसके दिल में ये दर्द उठ ही जाता था कि अंजलि ने बिना किसी गलती के उसे छोड़ दिया था। अंजलि ने अपनी नज़र उठाई और भीगी पलकों से कहा, मैं सिर्फ 19 साल की थी अभिमन्यु, मुझमें नहीं थी इतनी समझ। ठीक है, मैंने गलती की थी, लेकिन मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती हूँ, समझने की कोशिश करो। हाँ, मैं एक बुरी माँ थी, पर तुम भी तो कभी शिकायत करने के लिए नहीं आए। किससे शिकायत करता, कोई था मेरा जो सुनता? मुझे बस इतना पता था कि एक औरत थी जिसने मुझे अपने गुस्से के चलते जल्दी पैदा किया ताकि अपने सपनों को पूरा कर सके। क्या मैं सच में आपके सपनों के बीच में आ रहा था? जैसे तैसे खुद को संभाला तो आपकी और मर्चेंट फैमिली की डीज के बारे में पता चला। खुद को बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, मुझे आपकी हरकतों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, पर आप बाजी नहीं आ रही हैं। क्यों बार बार मेरे सामने आ जाती हैं आप मिस चौहान? अभिमन्यु ने भारी आवाज़ में जवाब दिया। उसकी आँखें मम होने लगी थीं। आज अभिमन्यु के इमोशंस उसके दिमाग पर हावी होने लगे थे। उसे इस तरह परेशान देखकर अंजलि को अच्छा नहीं लग रहा था, पर साथ ही उसके दिल में एक सुकून था कि पहली बार ही सही पर अभिमन्यु उससे शिकायत कर रहा था। अंजलि ने आगे बढ़कर अभिमन्यु का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन अभिमन्यु कुछ कदम पीछे हो गया था। उसने ना में सिर हिलाकर कहा, मेरी दादी और बाकी लोगों ने बचपन में बहुत कोशिश की थी कि वो मेरी खुशी के चलते आपको इस घर में ले आएं, लेकिन आज मैं आपसे कहता हूँ कि मेरी खुशी इसी में है कि आप मेरे सामने भी ना आएं। पहली और आखिरी बार कुछ मांग रहा हूँ मिस चौहान, कोई रिश्ता नहीं है हमारे बीच में और ना ही कोई एक्सपेक्टेशन है, आपको सही लगे तो आप मान लीजिएगा, यहाँ से चली जाइए और कभी मेरे सामने भी मत आइएगा। अभिमन्यु की आवाज़ बेहद सर्द होने लगी थी। अगर दूसरा कोई मौका होता तो अंजलि उसकी बात खुशी खुशी मान लेती थी, चाहे फिर उसके दिल में कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, लेकिन पार्थ के इरादों को जानते हुए अंजलि वहां से कभी नहीं जाने वाली थी जब तक कि वो पार्थ नाम के खतरे को अभिमन्यु की जिंदगी से दूर नहीं कर देती। उसको खुद की इंसल्ट से भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अंजलि ने गहरी सांस ली और खुद को मजबूत करके कहा, ठीक है, मान लेती हूँ तुम्हारी बात को, बदले में तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम्हें और इशिका को पार्थ से हर तरह के रिश्ते तोड़ने होंगे। इशिका पार्थ का प्रोजेक्ट नहीं करेगी, बच्चे होने तक तुम दोनों राजवंश फैमिली से दूर रहोगे। बोलो, मानोगी मेरी बात? आप जो कह रही है वो मानना मेरे बस में नहीं है, कुछ ऐसा मांगे जो मैं दे सकता हूँ, अभिमन्यु ने जवाब दिया। वो इशिका के किसी भी मामले में इंटरप्ट करके उसके करियर पर रोक नहीं लगाना चाहता था। ठीक है, फिर वही दे दो जो तुम दे सकते हो, मैं इस घर में रहूंगी जब तक कि तुम दोनों के बच्चे पैदा नहीं हो जाते, अंजलि ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। बातों की बातों में उसने अभिमन्यु को अच्छा खासा ट्रैप कर दिया था और अभिमन्यु अब पीछे भी नहीं हट सकता था। अंजलि की शर्त सुनने के बाद अभिमन्यु गुस्से भरी निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था। अंजलि ने सिर हिलाया और बेपरवाही से बोली, कोशिश करूंगी तुम्हारे सामने ज्यादा ना आऊं और गेस्ट विला के अंदर ही रहूं, बाकी अब तुमने प्रॉमिस किया है तो तुम पीछे नहीं हो सकते हो मिस्टर राजवंश।
अपनी बात खत्म करके अंजलि वहां से चली गई थी, जबकि अभिमन्यु गुस्से में पैर पटकता रह गया था। अभिमन्यु ने एक नज़र वसुधा की तरफ देखा। वसुधा ने गहरी सांस लेकर कहा, ये इतनी ही जिद्दी है, इस बात का तुम्हें अंदाज़ा पहले हो जाना चाहिए था। जब हम सबके इतने मनाने के बाद भी ये तुम्हारे पास वापस नहीं आई थी, तो अब क्यों आई है? किसी ने इन्हें बुलाया नहीं है, अभिमन्यु ने दांत पीसते हुए कहा। अब तो कोई रास्ता नहीं है, इग्नोर करना ही सही रहेगा, वसुधा ने जवाब दिया। अभिमन्यु आगे कुछ नहीं बोला था, बस वो अपने मूड को शांत करने की कोशिश कर रहा था। अंजलि से अपना ध्यान हटाने के लिए अभिमन्यु आधी रात को ऐशिका के कंपनी पब्लिक करने के लिए होने वाली पार्टी की तैयारी करने लगा। आखिर उसमें ज्यादा टाइम जो नहीं बचा था। फिलहाल के लिए इतना ही, अगले चैप्टर पर मिलते हैं। पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।